نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 20ویں پارے کا آخری رب ہے، سورة العنکبوت کے آغاز سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة العنکبوت، عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی کا جالہ. آیت نمبر 41 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے یہ بات ہے شرک کو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے. اور حقیقت میں اس پوری سورت کا جو ٹاپک ہے مین، وہ بھی یہی ہے کہ حق اور باطل یعنی شرک اور توحید کا فرق لوگوں کے بیچ میں اتنا زیادہ ڈفرینس پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اپنے ہی گھر والوں اور اپنے ہی خاندان والوں کی جان تک لینے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ پوری سورت جو ہے یہ ہجرت حبشہ کے تناظر میں نازل ہوئی ہوئی ہے. چاروں طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم تھا، اتنی زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں ان کے رشتہ داروں اور گھر والوں کی طرف سے کہ بالآخر حالات اتنے تنگ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حبشہ ہجرت کا حکم دے دیا. اس سورت کی ابتدائی 10 آیتیں مدنی ہیں اور باقی پوری سورت مکی ہے. یہ بھی سورتوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مدنی ماحول کی، کچھ مکی کی، لیکن ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے. بعض اسے مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے آخری سورت قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کئی اور چیزیں بھی ہیں. بہرحال یہ تو تاریخ سے اس کا تعلق ہے، لیکن آپ کو اس پوری سورت کو پڑھنے کے دوران ایمان اور آزمائش کا گہرا تعلق محسوس ہوگا، اور ہم سب پھر اپنا بھی جائزہ لیں گے. دین کو آپ بس قرآن کہا کریں، جیسے کہ پیچھے بھی بات کی کہ پہلے دور میں لوگ دین قبول کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، اور آج کے دور میں ہم قرآن قبول کرتے ہیں. آج قرآن پاک کی عملی دعوت کو قبول کرنے کے بعد جو حالات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ان حالات کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، ان کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے جو اس دور میں لوگوں کو باپ دادا کا دین چھوڑنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ ہم صرف مسلک کے نام پہ اگر اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں کہ اب ہم کسی خاص مسلک کو یا کسی خاص سوچ کو نہیں فالو کرتے بلکہ قرآن اور سنت کو لیتے ہیں، تو اسی پہ ہمارے گھروں اور خاندانوں میں کتنا ریئیکشن اٹھتا ہے. اور کوئی وہابی ہونے کا طعنہ دے گا، کوئی آپ کو کچھ، تو آپ اس کو ذرا اور بڑا کر کے دیکھیے کہ جب دین ہی چھوڑ دیا جاتا تو پھر اس وقت کیا ہوتا. کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. 13 سال کی وہ جنگ تھی کہ جس میں صحابہ کرام کے اندر اور زیادہ ہمت اور استقلال آیا ان مصائب کی وجہ سے جو کہ پیدا کی گئیں. اور ہم میں سے بھی ہر ایک اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں جتنی قربانیاں دے رہا ہے، جتنے حالات سے گزر رہا ہے، وہ اتنا پکا ہوگا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی اینٹ کو جتنا جمانا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ ٹھوکتے ہیں، اتنا زیادہ اس پہ سیمنٹ لگایا جاتا ہے، اس کو اور زیادہ پریشر میں رکھا جاتا ہے. کیونکہ پھر ایک ایسی دیوار قائم ہوئی کہ جو کفر کے آگے واقعی بند بن گئی، اور مدینہ میں آنے کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ساتھ دیا کہ واقعی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 13 سال میں جو کام نہ ہو سکا وہ مدینہ کے صرف 8-9 سالوں میں ہو گیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہوئے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ پہلے تو کوئی ایک مسلمان ہوتا تھا تو مکہ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگ جاتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ پھر ایک بندہ نہیں بلکہ گروہ اور خاندانوں کے خاندان آئے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دعوت میں ہم وہ دن دیکھیں کہ اللہ یہاں بھی ایک بندہ نہیں بلکہ خاندانوں کے خاندان آئے، اور اس طرح سے لوگ اس تبدیلی کو قبول کر لیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو آئیے سورت کو دیکھتے ہیں، بہت دل سوزی والی سورت ہے. پہلی آیت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا شعور کو بیدار کرنے والا سوال پوچھتے ہیں کہ جس کے بعد واقعی انسان اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یہ دو آیات ہمیں پوری تصویر کھینچ کے بتا دیتے ہیں ان حالات کی جس میں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی. اسلام کا قبول کرنا اصل میں مصیبتوں اور آفتوں کو قبول کرنے کے برابر ہو چکا تھا، مظالم کو قبول کرنے کے برابر ہو چکا تھا. کوئی غریب یا غلام ہوتا تو اس کو اتنی بری طرح مارا جاتا، اتنی سخت اذیتیں اور ان کو تکلیفیں دی جاتی کہ بیچارے کی چیخیں نکل جاتی. कोई कारोबारी शख्स होता, कोई दुकानदार या कारीगर होता, तो उसकी रोजी के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते, यहाँ तक कि भूखों मरने लगते। आज हमें कुरान के लिए जरा अपने माल में कुछ कमी होती हुई दिखे तो न जाने हमारी आंखों में क्यों मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। ये आंसू हमारे उस पर क्यों नहीं गिरते कि जब हम अपने आप को कई चीजों में अभी तक दीन में पीछे देखते हैं, इतना सुनने और सुनाने के बावजूद। लेकिन उस वक्त उनकी भूखों मरने की बात होती थी, और अगर कोई बासर खानदान का शख्स मुसलमान हो जाता तो उसके खानदान के लोग उसको इस तरह से ताने देते कि उसकी जिंदगी अजीरन कर देते। खौफ और दहशत की कैफियत तारी थी, एक ऐसा माहौल था, कैसे लग रहा था कि इस्लाम लोगों की जिंदगियों में तलखीब डालने वाला आ गया। आज भी देखिए बहुत सारे लोग कुरान के कल्चर को आम होता देकर बेचैन हो जाते हैं और मुठ्ठियां भींचते हैं और उन लोगों के खिलाफ बातें करते हैं जिन्होंने आके हमारे माहौल को पामाल कर दिया और उन्होंने हमारे घरों में लड़ाइयां और झगड़े कर दिए। अब होता क्या कि अगर तो सहाबा कराम की वो तरबियत ना हुई होती और वो ईमान ना होता, अगर उनको जन्नत अपनी आंखों से ना दिखती और जहन्नम उनको अपने आंखें ना दिखती, तो कब के घुटने टेक चुके होते। याद रखिए दीन के रास्ते में मुश्किल आती हैं, लेकिन वही लोग घुटने टेक के सरेंडर करके हालात के अंदर खसो खाशाक की तरह बह जाते हैं, जिनके अपने अंदर अभी अपने मकसद और अपने लगन और अपनी इस कॉज का यकीन नहीं होता। लेकिन सहाबा कराम का ईमान और बड़ा हुआ, कोई कमी उनके अंदर ना आई। कभी कभी इंसानी फितरत के तकाजे के तहत उनके ऊपर एक इज़्तिराब तारी हो जाता था। हबाब बिन अरत एक मौके पर अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी हम तंग आ गए हैं, क्या होगा, मता नसरुल्लाह, हमें इतना सता रहे हैं, तो उस वक्त क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करते। आपका चेहरा जो था जोश और जज्बे से सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि तुमसे पहले के जो अहले ईमान गुजरे इन पर तो इतनी सख्तियां तोड़ी गईं, किसी को जमीन में गड़ा खोद कर बिठा दिया जाता और उसके सर पर आरा चरा दिया जाता, इसके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाते, किसी के जोड़ों पर लोहे की कंघियां फेरी जाती ताकि वो ईमान से बाज आए। लेकिन अल्लाह की कसम ये काम पूरा होके रहेगा, यहाँ तक कि एक शख्स सना से हजर मौत तक बेखटके सफर करेगा और अल्लाह के सिवा किसी का उसको खौफ नहीं होगा। ये बातें, ये हदीसें हम सबको भी तसल्ली देती हैं। अपने मकसद पे लगे रहें, एक वक्त आएगा कि सब मुखालफतें खत्म हो जाएंगी। ऐसे इस तरह भी मरहलों में सब्र और तहम्मुल की बहुत जरूरत है। तो अल्लाह कहते हैं, क्या तुमने ऐसे ही सोच लिया, क्या ये मजाक था, क्या ईमान का दावा करना, खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना कोई खेल था। अल्लाह सुब्हान तआला ने आजमाइश तो लिखी हुई है। ऐसे लगता है कि मुसलमानों को डांटा भी जा रहा है और तसलियां भी दी जा रही हैं। काफिरों को डांटा जा रहा है, तुम मेरे बंदों को आजमाना चाहते हो, जो आजमा लो, और ईमान वालों के हौसले बुलंद किए जा रहे हैं कि देखो बंद मुठियों से जन्नत नहीं मिलती, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, बीज अगर हाथ में लिए रखें तो कभी नहीं उगेगा, जब उसको जमीन में डालते हैं फिर उगता है। अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह की जन्नत कोई सस्ता सौदा नहीं है, इसलिए इसको ना पीछे कर देना, काम करो और अल्लाह के रास्ते में आने वाले इम्तिहानात से डर जाओ और काम छोड़ दो, अपना नुकसान होगा। जितना बड़ा आप देखिए कि इल्म होता है उतना इम्तिहान बड़ा है। मास्टर्स वाले का पेपर तीसरी जमात के बच्चे से ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि ज्यादा पढ़ाया हुआ है। इसी तरह हम जितना इल्म हासिल करते जाएंगे हमारा इम्तिहान उतना ही बड़ा होता जाएगा। कमजोर ईमान होते हैं तो ये छोटे टेस्ट आते हैं, मजबूत ईमान होगा अल्लाह ताला बड़े इम्तिहान दे देता है, और इम्तिहान असल में हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए होता है। आप देखिए कि बस दफा उम्मीद किसी और जगह से होती है कि हाय अगर ये मैंने काम किया तो यहां से रिएक्शन बहुत आएगा, लेकिन इम्तिहान दूसरी तरफ से आ जाता है। जिस बंदे को आप सोच रहे होते हैं वो कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बच्चा बोल पड़ता है। शोहर को उस दिन गुस्सा नहीं आया तो बच्चों को गुस्सा आ गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे कभी कभी हादसा होने लगता है ना, तो ड्राइवर एक तरफ की बजाय अचानक दूसरी तरफ निकल जाता है। तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ईमान की आजमाइशों से बचाए और हमें इस रास्ते में आने वाली मुसीबतों और परेशानियों और आजमाइशों को खुशी से सुकून के साथ बर्दाश्त करने वाला बना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हसिबल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत यस्बिगूना, और क्या ये लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे। बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। अब इसमें उनको डांट दिया, कर लो मेरे ईमान वालों को डांटो, करो क्या करते हो, डालो इनको पत्थरों पे, डालो इनको कोयलों पे, जो करना है कर लो, लेकिन याद रखो कि ये लोग अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। और बात भी तो यही है कि मन कान यरजू लिका अल्लाह, जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ जानता और सुनता है। बात तो यही है कि वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، دین کے راستے میں ڈٹ جائے گا، تو بے شک وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بھی نیاز ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جہدہ کا لفظ میں جہدہ نہیں ہے، جہدہ کیا ہوتا ہے؟ خود محنت کرنا، یعنی آپ دین سیکھ رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، یہ جہدہ، یہ جہد ہے آپ کی، لیکن جہد میں مخالفت ہے، دوسرے کے مقابلے میں محنت کرنا، یہ وہ اضطراب ہے، اور یہ وہ تانے اور یہ وہ الزامات ہیں جس کے باوجود بھی انسان اللہ کے راستوں پہ لگا رہتا ہے، اور یہ وہ اس قسم کی مشکلات ہیں کہ جس میں دوسرے انوالو ہوتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو دین کے راستے میں اگر صرف اپنی ذات سے محنت کرنا ہو تو شاید بہت سارے لوگ خوشی خوشی کر لیں، کیونکہ اس میں بھی ایک لذت ملتی ہے، اور اللہ نے خود اس کام کو کہا کہ یہ آسان کر دیا جاتا ہے جو کرے، لیکن اصل میں یہ جہدہ کے درجے پہ نہیں ہم آ پاتے۔ یہاں کہیں ہمیں اپنے سسرال نظر آتے ہیں، کہیں مہکا نظر آتا ہے، کہیں خاندان، کہیں برادری، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تسلیاں دیتا ہے کہ دیکھو میرے راستے میں محنت کرو گے تو کیا میں تمہارے عمل ضائع کروں گا؟ نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور ان کو بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ آپ دیکھیے کہ سارا دن کوئی کام کرے، لیکن کس امید پہ؟ کہ مالک کہتا ہے کہ رات کو میں تمہیں پے دے دوں گا، آج تمہیں دوسرے دنوں سے زیادہ دے دوں گا، یا تمہیں دوسروں سے زیادہ دوں گا۔ اس وقت پھر ایک انسان جب جمتا ہے تو اس کے بعد اس کو یقین مل جاتا ہے کہ میرا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے رستوں میں یہ کام کرتے ہیں تو دیکھیں دو اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اعمال کی برائیاں دور اور بہترین اعمال کی جزا دی جائے گی، اور برائیاں دور ہونے میں ہماری کتنی ذاتی خرابیاں دور ہو رہی ہیں، ہمارے کتنے عیب دور ہو رہے ہیں، ہمارا اخلاق درست ہو رہا ہے، ہماری عادات میں جو خرابیاں تھیں وہ ساری دور ہو رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرما دے۔ اور لیکن دیکھیں آگے جو لفظ ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے۔ پیچھے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ان کے عام کام جو ہوں گے ان سب کو اٹھا کر احسن کاموں پہ ڈال دیا جائے گا۔ مثلا جو سب سے اچھی نماز ہوگی ان کی، باقی سب ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی اسے ایک اچھی نماز کے برابر کر دی جائے گی۔ یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت 160 میں کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 بدلے ملیں گے۔ اسی طرح سورۃ قصص آیت 84 میں پڑھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کے ساتھ آئے گا، بھلائی کے ساتھ آئے گا، اس کو اس سے بہتر مل جائے گا۔ سورۃ نساء آیت 40 میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یسلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ اب اس کے بعد کچھ عملی مثالیں ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم ضرور صالحین میں شامل کریں گے۔ یہ روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ 18-19 سال کا ایک جوان بچہ تھا، اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں جو ابو سفیان کی بھتیجی تھی، یہ حمنہ ان کا نام تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، کہنے لگی کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے، نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اب گرمی اور دھوپ میں بیٹھنا سوچئے۔ اب یہ شخص پریشان ہو گئے کہ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، اور اگر میں نہیں مانوں گا تو نافرمانی کروں گا، اور ماں نے بھی یہی تانا دیا۔ یہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ساری بات بیان کی، اس پر آیت نازل ہوئی۔ اور اس وقت صرف ایک یہی نہیں بلکہ کتنے ٹین ایجرز تھے جو ان حالات کا شکار تھے، آج بھی وہی دور پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جیسے سانپ بدل لیتا ہے اپنے رخ کو، گرگٹ بدلتا ہے، اس طرح معاشروں کے اندر انسانوں کے رویے بھی بدلتے ہیں۔ آج بھی یہی دکھ رہا ہے، ینگز اپنے ماں باپ سے زیادہ اسلام پہ آ رہے ہیں جلدی، اور ماں باپ ان کے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ پہلے کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک جملہ نوٹ کر لیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنا۔ دو لفظ، خدمت ورسز عبادت۔ بہت سارے ایشوز میں آپ کو اللہ تعالیٰ شرح صدر دے دے گا اپنے ماں باپ کی بات ماننے، अपने ससुराल की बात मानने, अपने बुजुर्गों की बात मानने में, अपने बड़ों की बात मानने में, जिसको भी आप किसी जगह बड़ा मानते हैं, इज्जत के नाते से इज्जत करनी है, खिदमत करनी है, इबादत नहीं करनी। इताअत उतनी करनी है जो अल्लाह के हुक्म के अंदर होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तुअतिल मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि अल्लाह को नाराज करके दूसरों को राजी नहीं किया जा सकता जो कि उसकी मखलूक होगी। और खास तौर पे दीन में तो ये मोड़ आता है, फिर ऐसी औलादें इंशाल्लाह गुनाहगार नहीं है। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कब तक ये रिश्ते रहेंगे, ये सिर्फ दुनिया की बातें नहीं है, आखिराना तो मेरे ही पास है। और जब आओगे तो फौन अब भी हुक्म भी माँ कुन तुम तामलून वल्लज़ीना आमनु वामिलुस सालिहात, जो अच्छे काम करके आएंगे। यहाँ वामन और अमिलुस सालिहात क्या है कि मुखालफतों के बावजूद हक पे जम जाना, अल्लाह इनको सालेहीन में दाखिल करेगा। हो सकता है माँ बाप ने तो घर से ही निकाल दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बाप ने ताना ही दे दिया कि मैं तुझे खुद ही घर से निकाल दूंगा, तुझे रजम कर दूंगा, लेकिन अल्लाह इनको वहां सालिह लोगों में डालेगा। दुनिया में भी अल्लाह इनको बेहतरीन दोस्त अता करता है। लेकिन लोगों को अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात कैसी लगती हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए। वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में कोई ऐसा है जो ये कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब अल्लाह के मामले में वो सताया गया तो इसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया। यानी लोगों की बातों से इतना डरा कि जैसे अल्लाह का कोई अजाब है जिससे डरा जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि लोगों की बातों को, लोगों की तरफ से क्रिएट किए हुए हालात को अल्लाह के अजाब से ताबीर नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत छोटी बात है, अल्लाह ने पकड़ लिया तो वो अजाब ऐसा होगा कि जिसमें इंसान की चीखें निकल जाएंगी। अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं? और अल्लाह को तो जरूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। नोट करें, बार बार यही आ रहा है कि अल्लाह छांटेगा कौन ईमान वाला कौन मुनाफिक, और ये छांट सारी जिंदगी होती रहती है। दिल बदलने वाली चीज है ना, थोड़े थोड़े दिनों बाद हमारा दिल बदल जाता है, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ ये टेस्ट होते हैं। जैसे हम कुछ अरसे बाद शुगर का टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, इस तरह कुछ कुछ अरसे बाद हम पर जो मुश्किलात आती हैं, जो पाबंदियां लगती हैं, जो हमारे हालात पलटा खाते हैं, एक दिन होता है इतने खुश खुश आते हैं ऐसा लगता है सब ठीक हो गया, पता चला उसी दिन गए और घर में इतना बड़ा धमाका हो गया कि बस लगा कल से तो कोई जाने नहीं देगा। तो ये बिल्कुल वही ब्लड प्रेशर वाला टेस्ट है कि जिसमें एकदम लगता है कि चीखें निकल जाएंगी, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से सेहत भी मिल जाती है अगर इंसान स्ट्रेस टेस्ट जो होता है उसके अंदर कामयाब हो जाए। अल्लाह सुब्हान तआला अपने नबी को और आज ईमान वालों को तसलियां देते हैं, और वो क्या, ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे, हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं, वो कतई झूठे हैं। हाँ जरूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी, और क्यामत के रोज यकीनन इनसे इन झूठ बांधने के बारे में बाजपुरस होगी जो वो किया करते थे। देखिए कितने डंके की चोट पे लोग ये बातें कहते हैं, अच्छा कल कुछ होगा ना तो मैं पकड़ लूंगा, मैं पूछ लूंगा। एक कोई साथी है तो वो अपने सगे वालिद की बात बता रही थी, रियली अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, मैं हैरान होती हूँ कि इतने मोहब्बत वाले रिश्ते इस तरह के। कुरान उन्होंने कुछ कहीं पढ़ना शुरू किया तो कहती कि बाप जो है वो मुझे ताने देते हैं कि तुम बहक गई हो और मैं तुम्हें ये कर दूंगा और मैं तुम्हें वो कर दूंगा, और वो बाप जिनके साथ कहती इतनी मोहब्बत जिन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा, इतना प्यार है बाप बेटी का, लेकिन मेरे कुरान पढ़ने पे और मेरी कुछ चीजों पे अमल करने की वजह से वो इतने अपसेट हैं कि वो मुझे इतने हार्श और सख्त लफ्जों में बात करते हैं कि मैं सोच नहीं सकती। अब आप देखिए कि यही बातें तो अल्लाह ताला हम सबको बताता है, अल्लाह ताला सबके साथ आसानियां कर दे, और कभी भी लोगों की तकलीफों की वजह से ईमान और नेकियों से पीछे नहीं होना, क्योंकि ये तो चंद दिन की बातें हैं, जो आगे होंगी वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही खैर है। अब इसके बाद अंबिया कराम के किस्से और खास तौर पर हजरत नूह का किस्सा शुरू में आ रहा है, क्योंकि उस कौम का भी मसला शिर्क था। जब भी इस्लाम अपनी असल शक्ल में आएगा यही हालात होंगे जो हजरत नूह के दौर में थे, और आज तक आपको यही चीजें दिखने लगी। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, वो 50 कम 1000 बरस इनके दरमियान रहा, आखिरकार इन लोगों को तूफान ने आ घेरा इस हाल में कि वो सालिम थे, फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और इसे दुनिया वालों के लिए एक निशान इबरत बनाकर रख दिया। देखिए कि जास कम 1,000, 950 साल। सोचिए जरा, अगर हमारी जिंदगियां इतनी लंबी होती, पहले तो हम ये सोचते हैं कि हम इतनी देर कुरान पढ़ते पढ़ाते, खुशी का एहसास होता है, लेकिन इतने साल की कोशिशों के बाद भी अगर नतायज वो ना निकलते जो हम चाहते हैं, तो हमारा गम कैसा होता। हजरत नूह को सोचिए, कितना उनका दिल बोझर होगा, कितने गमगीन होंगे। उनको तो अपनी जाती खुशियां खुशियां नहीं लगेगी कि भाई अल्लाह ताला, मेरी इतनी कोशिश है, पता नहीं मैं ही सही काम नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे ही नहीं बुलाना आता, शायद मैं एक्सट्रीम पे हूँ, शायद मेरे अंदाज में ज्यादा शिद्दत है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि गम ना करो, नतायज देखो। नतीजा ये निकला कि हमने सारों को डबो कर उन चंद लोगों को बचा लिया, और हकीकत यही है कि ये वो चीज है जो इंसान को तसल्ली देती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी कोशिश के नतीजे में अगर किसी के अंदर में कोई एक छोटा सा पत्थर भी पड़ जाता है, तो मैं इस पे खुश हूं, बजाय इसके कि वो शख्स मेरी तरफ आ जाए, मेरे कहने पर अल्लाह ताला की तरफ आ जाए। फिर दूसरे नबी, और आप देखेंगे यहाँ जो नबी हैं खासतौर पे, इनके बहुत जगह हमने हालात पढ़े, लेकिन यहाँ शिर्क और तौहीद के फर्क में पढ़िए कि किस तरीके से हर दौर में इनको अल्लाह ताला ने ये सारा मामला किया। क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस काल अली कौमी वत्तकू, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा जब किसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, तुम्हारे लिए बेहतर है ये अगर तुम जानो, तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पूज रहे हो वो तो महज बुत हैं, और तुम एक झूठ घड़ रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी परस्तिश तुम करते हो, वो तुम्हें कोई रिस्क देने का इख्तियार तक नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो, उसी की बंदगी करो और उसका शुक्र अदा करो, इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। अगर तुम छुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें छुटला चुकी, और रसूल पर तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से एक और नबी की बात, लेकिन इन कौमों का मामला और अल्लाह की सुन्नत बिल्कुल एक है। हजरत इब्राहिम की कौम बिजनेस माइंडेड थी, दौलतमंद पढ़ी लिखी कौम थी, और हजरत इब्राहिम ने इनको पूरे व्यूज दिए। ये बिल्कुल ऐसे कि आज के दौर में एक होते हैं सीधे साधे भोले भाले लोग, आप उनको राज गिलगा कर भी बात सुना दे तो समझ जाएंगे, लेकिन ये कितने पढ़े लिखे लोग, आप उनको पूरी स्किल्स यूज करके, कंप्यूटर यूज करके, प्रेजेंटेशंस के साथ, आप उनके इंटेलेक्ट पे लेके जाके बात करें, फिर भी जब दुनिया सामने आती है तो लोग उस वक्त ये सारी बातें भूल जाते हैं कि अल्लाह का दीन हमें किस तरह से मुतासिर करता है। और ये बात आप अक्सर लोगों से सुनेंगे, जब हम आ जाते हैं तो हमारा जाने को दिल नहीं करता, हम जब कुरान सुनते हैं तो उस वक्त हमें बस दिल चाहता है अब इसको कभी ना छोड़े, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी कशिश या दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी मजबूरी बन जाती है कि बाज दफा जानते बूझते भी इंसान इस चीज की तरफ नहीं आ पाता जिसके लिए उसका दिल चाह रहा होता है। मत सोचिए जो लोग दीन के लिए नहीं आते उनका दिल नहीं चाहता, दिल उनका भी बहुत चाहता है, लेकिन रोक पड़ चुकी होती है, रुकावटें पे रुकावटें आती हैं। अल्लाह ताला हमें कहते हैं जरा कायनात में निकलो, क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि किस तरह अल्लाह खल की इब्तिदा करता है फिर इसको दोहराता है। यकीनन ये दोहराना तो अल्लाह के लिए आसान तर है। इनसे कहो कि जमीन में चलो फिर और देखो कि उसने किस तरह खल की इब्तिदा की, फिर अल्लाह ताला दूसरी बार भी जिंदगी बख्शेगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम फरमाए, और उसी की तरफ तुम फेरे जाने वाले हो। तुम ना जमीन में आजिज करने वाले हो ना आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं। जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों और उससे मुलाकात का इनकार किया, वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक सजा है। देखिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये कितनी बड़ी बात है, दर्दनाक अजाब। किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि दुनिया की चीजें इनके काम नहीं आएंगी, अल्लाह ताला ने इनको किस तरह एक नुतफे से पैदा किया, फिर एक झगड़ालू इंसान बनकर कैसे अल्लाह के ही सामने खड़े होने लगते हैं। ये असल में बीच में जुमला मोतरजा थे हजरत इब्राहिम की दावत में। अब अल्लाह ताला दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की बात करते हैं कि फमा कान जवाब कौमी ही, फिर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा कि कत्ल कर डालो इसको या जला डालो इसको, आखिर अल्लाह ताला ने इसे आग से बचा लिया। यकीनन इसमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं, यानी जब दलाल के आगे ना बैठ सके तो फिर तशद्दुद पे आ गए, कहा जला दो इसको, हालांकि अल्लाह इसमें निशानी देता है। क्या निशानी है? कि अल्लाह के रास्ते में कभी आग भी को जला दे, लेकिन अल्लाह ताला ना चाहे तो वो आग तुम्हारा कुछ भी नहीं बदल सकती। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को आग से बचाकर रहती दुनिया तक इंसानों को तसल्लियां दे दी, कि अगर कभी ऐसे हालात भी होंगे कि बाहर से तुम वाकई बड़े दुखी हालात में होगे, लेकिन तुम्हारा दिल ठंडा होगा, तुम्हें उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप कभी कभी अपने दिलों को देखा करें, बल्कि जरूर देखें। एक टेस्ट है, यानी टेस्ट को कह लीजिए, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, मुश्किल आप पे आएगी, आजमाइश आएगी, बाहर से हालात तंग होंगे, पाबंदियां भी होंगी, लेकिन आपका दिल मुतमईन होगा। अगर दिल मुतमईन है, बाहर के हालात खराब है, तो ये ईमान की अलामत है। और बाज दफा बाहर के हालात इतने बुरे नहीं होते, लेकिन दिल बोझ में, डिप्रेशन और सुस्ती और बुरी बुरी बातें आना, ये ईमान की कमजोरी है। अगर आप में से किसी को दीन पे अमल करने की वजह से भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप समझे कि शैतान आप पर आ गया है। अब आप अपने ईमान की फिक्र करें, फिर उसका इलाज सुबह शाम की दुआओं से, सूरह बकरा पढ़िए, अपने आप को मसरूफ कीजिए, अपने किसी अमल में और पुख्तगी लाइए कि आखिर मेरा दिल क्यों नाराज है, मेरा दिल खुश क्यों नहीं। क्योंकि ईमान वाला तो जन्नत में रहता है, वो तो दुनिया में आग में भी बैठा है, तो वो मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है, बोल रहा है। तो कभी अपने चेहरों पे मलाल और दुख ना रखें, ये इस बात की कीमत करता है, इस बात की चुगली खाता है कि हमारा अपना ईमान ठीक नहीं है। अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात में तो जान भी चली जाए तो चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। बीबी सुमैया के बारे में आता है, कितने तकलीफ और तशद्दुद के साथ अबू जहल ने उनको मारा था, कि जिस्म के दो टुकड़े करवा दिए, दो ऊंटों के साथ बंधवा कर उनको मुख्तलिफ हिस्सों में चलवा दिया, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। या तुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिला रब्बी की राधियत मर्दिया। तो अल्लाह ताला हमारे चेहरों से खुशी और सुकून को कभी ना छीने, ताकि लोग देखें कि इनको किस बात की खुशी है। अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं, ऐसे लोगों को बता दो क्या। और उसने कहा कि तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया। यही होता है ना, देखिए जहां अल्लाह की इबादत छुटेगी, वहां मोहब्बतों की बुनियाद क्या है? कारोबार, फैशन, दुनिया की चीजें। तो अल्लाह करे दुनियावी चीजों पर एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, गलत अकीदे, गलत रस्में और गलत दोस्तियों के ऊपर तुम मोहब्बत करते हो, मगर कयामत के रोज तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत करोगे, और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। सोचिए, दुनिया में यही चीजें नहीं छुटती ना। बाज दफा हमारे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट ये भी होता है कि नहीं, फिर हम अपनी दोस्तों का हर एक सर्कल नहीं छोड़ सकते, फिर वो हमें ये होगा, फिर वो पार्टियों में नहीं बुलाएंगी, दावतों में नहीं। तो अल्लाह कहते हैं दुनिया में मान जाओ, एक दूसरे के कहने पे खूब गलत काम करो, लेकिन याद रखो कि एक वक्त आएगा कि तुम्हें ये सब दोस्ती दुश्मनी में लगेगी। याद रखिए कि जो बातिल के ऊपर इत्तेहाद होते हैं ना, वो ज्यादा देर नहीं चलते। ये हक की दोस्तियां जो 10-10 साल भी लोगों को एक जगह रखती हैं और कोई छोटा बड़ा नहीं समझता अपने आप को, लेकिन जहां नियतों में फितूर आता है, जहां बातिल होगा, तो वहां सबसे पहले उहदों की जंग शुरू हो जाती है। साथ रहने वाले एक दूसरे से खुश नहीं होते। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे तंग हालात में फामन लहू लूत, फिर उस वक्त लूत ने उसको माना और इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ, वो जबरदस्त और हकीम है, हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद अनायत फरमाई। ये देखिए अब इनामात का सिलसिला शुरू हो गया। इब्राहिम जमे खानदान और बिरादरी और बाप के सामने हक के लिए नहीं दबे, तो अल्लाह ताला ने अब उनको आगे नस्लों का फर्क दिया। याद रखे जो माँ बाप की तरफ से गम सहते हैं और उस पर सब्र करते हैं, अल्लाह उनको औलाद की खुशियां देता है, उनकी औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बनाता है। हम में से कोई अगर अपने माँ बाप को अब नहीं समझा सकता, तो अपनी औलादों को समझाना शुरू कर दे, उन पे की कोशिश करे, उनको इतना खूबसूरत दीन सिखाइए कि जिसके बाद वाकई वो हमारी आंखों की ठंडक हो। लेकिन दो किस्म के लाइफ स्टाइल में उनको ले जाना, ये असल में फिर बाद में हमारे लिए मसला डालता है। बाज दफा ये ऐसे ही हो जाता है जैसे गर्म और ठंडे को जमा कर दें, कभी गर्म कभी ठंडा, तो बीमार होंगे ना। इसलिए अपनी बच्चों को तो कम अज कम पूरे फोकस्ड होके 100% दीन पे पालिए। आप उनको अगर कभी कार्टून्स में बिठा दें, कभी उनको चकी चीज पे ले जाएं, कभी उनको गलत चीजों पे माने, कभी मस्जिद में ले जाएं, सुबह कुरान पढ़ा दें, शाम को फिल्म लेने दिखाने चले जाएं, तो याद रखिए कि वो कोई खास इतनी खूबसूरत नस्ल नहीं पैदा होगी। फिर आपके मसले उतने ही रहेंगे जितने आ जाएं। हम कहते हैं अल्लाह सबकी मदद आती है, मेरी क्यों नहीं आ रही? शायद इसलिए नहीं आ रही कि अभी मैंने अपने लिए एक सही रास्ता पूरे का पूरा नहीं चुना। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करें। उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जबकि इसने अपनी कौम से कहा तुम तो वो फुहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया, क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और आहजनी करते हो, यानी चोरियां डाके करते हो, रास्ते में मुसाफरों को लूटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो, यानी पार्टीज और क्लबों के अंदर। फिर कोई जवाब इसकी कौम के पास इसके सिवा न था कि उन्होंने कहा कि ले आ अल्लाह का अज़ाब अगर तू सच्चा है। लूत ने कहा है मेरे रब, इन मुफसिदों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। यहां मदद आई कैसे? फरिश्ते पहुंचते हैं कैसे? जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम के पास बिशारत लेकर पहुंचे तो उन्होंने इससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वहां तो लूत मौजूद है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है, हम उसे और उसकी बीवी के सिवा इसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे। इसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर जब हमारे भेजे हुए लूत के पास पहुंचे तो इनकी आमद पर वो परेशान हो गया और तंग दिल हुआ। उन्होंने कहा, न डरो और न रंज करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं इस फिस की बदौलत जो ये करते हैं, और हमने इस बस्ती की खुली निशानी छोड़ दी है इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। आप देखिए कि कौम लूत का किस्सा पीछे भी बहुत जगह आया, लेकिन हर जगह पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि अल्लाह का कानून बड़ा बेलाग है। अगर हजरत लूत की बीवी ही क्यों ना हो, अगर वो भी उनके मिशन में साथ नहीं होगी तो अल्लाह ताला उसको भी मदद नहीं देगा, उसको भी नहीं बचाएगा। और बुराई का अंजाम आज हो या कल, बुराई तो बुराई है और उसका अंजाम बुरा होगा। आगे हजरत शुएब की कौम, व इला मदयन अखाहुम शुएबा, और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा, इसने कहा, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और रोजे आखिर के उम्मीदवार रहो और जमीन में मुफसिद बनकर ज्यादतियां न करते फिरो। मगर उन्होंने इसे झुटला दिया। आखिरकार एक सख्त जलजले ने इनको आ लिया और अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए, और आद और समूद को हमने हलाक किया। तुम वो मुकामात देख चुके हो जहां वो रहते थे। इनके अमाल को शयातीन ने इनके लिए खुशनुमा बना दिया और इन्हें सीधे रास्ते से दूर कर दिया, हालांकि वो होश गोश रखते थे, समझदार थे, इंटेलेक्चुअल थे, जीनियस थे। आज भी आप कई लोगों को नहीं ऐसा देखते, दुनियावी अंदाज से बहुत कामयाब, बहुत महजब, डिसेंट बात करें ऐसे लगता है इनसे ज्यादा शाइस्ता बंदा कोई नहीं, लेकिन दीन की बात करें तो बिल्कुल कुनछुरी बन जाते हैं। कहा ऐसे लोगों की होश सारी वापस चली जाती है जब वो अल्लाह की तरफ आते हैं। व कारून व फिरौन व हामान, कारून और फिरौन और हामान को हमने हलाक किया। मूसा उनके पास बैयिनात लेकर आए थे, मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का जोम किया, यानी अपने आप को बड़ा समझा, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले ना थे। आखिरकार हर एक को हमने इसके गुनाह में पकड़ा। फिर इनमें से किसी पर हमने पथराव करने ली हवा भेजी, और किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया, और किसी को हमने जमीन में धसा दिया, और किसी को गर्क कर दिया। अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला न था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ऊपर भी जुल्म करने से बचाए, ऐसा ना हो कि हम जुल्म कर करा के खुद को ही रुसवा कर ले। अब इसके बाद आप देखिए कि सूरत का नाम चूंकि अनकबूत है तो यहाँ उसी के बारे में आयत आ रही है। मसलुल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस बना लिए हैं, इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है, और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते, ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं अल्लाह इसे खूब जानता है और वही जबरदस्त और हकीम है। ये मिसालें हम इन लोगों की समझ के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखते हैं। इल्म की शान हक और बातिल, शिर्क और तौहीद का फर्क बताती है। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है, दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए। यहाँ देखिए कि बैतुल अनकबूत की बात हुई है, तो मकड़ी का जाला अगर आपने करीब से देखा हो, कितना नाजुक, कितना महीन, कितना खूबसूरत, लेकिन एक फूंक मारो तोड़ जाता है। शिर्क का भी यही हाल है, बज़ाहिर आज भी शिर्क का कल्चर आम दिखता है, फहाशी का कल्चर आम दिखता है, लेकिन असल में एक मर्द मोमिन की फूंक की जरूरत है कि जिसके साथ ये सब खत्म होगा। पूरी दुनिया में ये जो वेब फैला हुआ है, वेब कहते हैं इसको भी, तो आज देखिए वेबसाइट्स, नेट, आज चारों तरफ ऐसे लगता है कि अनकबूत फैले हुए हैं जो हमारी नस्लों के जहनों को ट्रैप कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उनके लिए पेश की जाती हैं। लेकिन बात क्या है कि हम अल्लाह से नहीं डरते, सिर्फ लोगों से डरते हैं। हम लोग कोई मीडियम यूज करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेज में तो हमेशा ही करते हैं, कुछ अरसे के बाद वो फिर उसको अपडेट कर देते हैं, फिर अपडेट करते हैं, नए नए फीचर्स आते हैं। तो मैंने एक आध दिन पहले जब उसको खोला तो उसमें नीचे एक टैग चल रही थी, कुछ ऐसे लिखा हुआ था, मुझे अब याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से ही था कि फैमिली सेटअप ना, तो उसके आगे चेक करें। तो मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आप अगर इसको क्लिक कर देंगे तो मतलब कुछ चीजों को नहीं देख सकेंगे। और अगर आप 18 ईयर से छोटे हैं, और जो बात मुझे सबसे क्लिक की वो क्या थी कि आप जिस मुल्क में रहते हैं अगर उसके लॉ के ये खिलाफ है तो फिर आप इसको बिल्कुल क्लिक ना करें। जो बात का खुलासा आपको बता देती हूँ, बात थोड़ी मुबहम हो गई, यानी कुछ मुल्कों में 18 ईयर्स की एज के नीचे वाले लोग कुछ गंदी चीजें, सेक्सुअल चीजें, तस्वीरें वो नहीं देख सकते, जुर्म है 18 से नीचे। तो उन्होंने उसमें एक लाइन क्या लिखी हुई थी कि इफ यू आर अंडर 18, तुम 18 साल से छोटे हो, और दूसरी बात है जिस मुल्क में तुम रहते हो वहां के लॉ के ही अगेंस्ट है, तो बिल्कुल इन चीजों को ना देखना जो हमने अंदर छुपाई नहीं है। हाँ बड़े हैं तो फिर इट्स ओके। तो मैंने सोचा कि इनको किसी मुल्क के लॉ का इतना फिक्र है, तो अल्लाह के लॉ का फिक्र नहीं है। कौम लूत की मिसालें सामने मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों के दीन की हिफाजत करें, आंखें खोल के इन बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि इनकी नजरें झुक जाएं, ईमान दिखे। आप कोई पाबंदियां नहीं लगा सकते आपके, मैं घर बैठ जाऊं तो बच्चों को देखूंगी, नेवर। बच्चे बहुत होशियार हैं, हम बहुत होशियार हो गए, हमें इतना को कंप्यूटर आ गया कि दूसरों को ना पता चले तो हम जो मर्जी देख लें, तो बच्चों को क्या नहीं पता होगा। लेकिन आप उनके अंदर ईमान, तकवा, प्यार, मोहब्बत साथ लेकर उनको ऐसे ऐसे लोगों के पास बिठाएं, ऐसी बुक्स पढ़ाएं, सहाबा की स्टोरीज, वो मोहब्बत दें जो अनडिवाइडेड किस्म की हो। चाहे 10-15 मिनट आपके पूरे दिन में से उस बच्चे को दें, जो रात का वक्त हो, अंधेरे का, स्टोरीज के नाम पे कहा गुड नाइट स्टोरीज हैं, माँ का ईमान और तकवा बच्चों में जाएगा। टीचर्स और प्रिंसिपल्स बाकी एक सिर्फ हल्का सा काम करते हैं, काम आपको ही करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। यहाँ पे पारा पूरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमतिही ततिम्मुस्सालिहात, 2/3 पूरा हो गया हमारा ये सेट। अब इंशाल्लाह 21वें पारे से तीसरे और आखिरी हिस्से का आगाज होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।